Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Good evening and welcome to the Tuesday edition of Market Mantra, the program in which we give you a complete update on the economic, business and stock market news of the day. My name is Rajesh Lake and with me is my co-anchor in Hindi, Nikhil Kumar.
नमस्कार मार्केट मंत्रा में आप सभी का स्वागत है. इस कार्यक्रम में हम देश और दुनिया से आर्थिक व्यापारिक तथा शेयर बाजार के ताजा समाचार आपके लिए लेकर आए हैं और उन खबरों पर चर्चा भी करेंगे. आज हमारे साथ स्टूडियो में आमंत्रित हैं आर्थिक पत्रकार दीपशिखा सिकरवार. दीपशिखा कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है.
वार्म वेलकम दीपशिखा.
थैंक यू राजेश एंड थैंक यू निखिल.
फर्स्ट द हेडलाइंस. बेंचमार्क डोमेस्टिक इंडिसेस एंड ओवर 0.5% डाउन. Sensex falls over 500 points, Nifty holds 26,000. Asian stock markets close mixed, and Kremlin spokesperson Dmitry Peskov expresses confidence on India-Russia trade, says it will reach $100 billion by 2030.
घरेलू शेयर बाजार में आज आधा प्रतिशत से अधिक की गिरावट. सेंसेक्स 500 अंक लुढ़का और निफ्टी 26,000 के आसपास. एशियाई शेयर बाजारों में मिलाजुला रुख देखा गया और रूस के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने कहा वर्ष 2030 तक भारत और रूस के बीच आपसी व्यापार बढ़कर 100 अरब डॉलर तक पहुंचेगा.
The views and opinions expressed by the experts in this program are their own. And not that of Akashvani. Akashvani advises its listeners to do their own research or consult a registered professional before taking any investment decision. We further advise all listeners to exercise due diligence and rely on their own judgment for taking any financial decision.
घरेलू शेयर बाजार में आज सेंसेक्स और निफ्टी सूचकांक आधे प्रतिशत से अधिक की गिरावट के साथ बंद हुए. बाजार नकारात्मक रुख के साथ खुला और पूरे सत्र में लाल निशान के साथ कारोबार करता रहा. अधिकांश क्षेत्रों में बढ़ी बिकवाली के बीच सूचकांक लगातार तीसरे सत्र में गिरावट के साथ बंद हुए. सेंसेक्स 504 अंक नीचे आकर 85,138 पर पहुंच गया जबकि निफ्टी 144 अंक की सुस्ती के साथ 26,032 पर आ गया. बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के विस्तृत बाजार सूचकांकों में भी नुकसान देखा गया. मिड कैप सूचकांक 0.1% से अधिक नीचे आ गया जबकि स्मॉल कैप सूचकांक आधा प्रतिशत लुढ़क गया.
बेंचमार्क डोमेस्टिक इक्विटी इंडिसेस द सेंसेक्स एंड द निफ्टी एंडेड मोर देन 0.5% डाउन टुडे एक्सटेंडिंग लॉसेस फॉर अ थर्ड स्ट्रेट सेशन. द मार्केट्स ओपनड ऑन अ नेगेटिव नोट एंड रिमेंड अंडर प्रेशर थ्रू आउट द सेशन. दे इवेंचुअली क्लोज्ड विद कट्स amid a broad-based sell-off across most sectors. The Sensex fell 504 points to close at 85,138, while the Nifty dipped 144 points to settle at 26,032. The broader market indices at the Bombay Stock Exchange also edged down. The mid-cap index lost over 0.1%, while the small-cap index dipped over 0.5%.
सेंसेक्स की 30 में से 20 कंपनियों के शेयरों में गिरावट दर्ज की गई. सबसे अधिक नुकसान उठाने वाले शेयरों में एक्सिस बैंक 1.3%, एचडीएफसी बैंक और रिलायंस 1.25% और आईसीआईसीआई बैंक 1.2% से ज्यादा नीचे आ गए. वहीं सर्वाधिक बढ़त वाले शेयरों में आज एशियन पेंट्स 3.1%, मारुति 0.8% और भारतीय एयरटेल 0.6% ऊपर चढ़ गए.
Across sectoral indices of the BSE, 17 out of 21 sectors ended with losses. Among the key decliners, services slipped 1%, financial services dipped almost 0.8%, and BankEx dropped over 0.7%. Among the top gainers, telecommunications gained more than 0.6%, consumer durables rose over 0.4%, and tech added more than 0.1%. The overall market breadth of the BSE was negative as shares of 2,563 companies declined, 1,586 advanced and 167 remained unchanged.
अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में आज रुपया डॉलर के मुकाबले 32 पैसे कमजोर होकर 89.87 रुपये प्रति डॉलर के स्तर पर बंद हुआ. छह अन्य प्रमुख मुद्राओं की तुलना में डॉलर की मजबूती मापने वाला डॉलर सूचकांक दिन के कारोबार में 99.49 पर था. दीपशिखा जी, कार्यक्रम में एक बार फिर से आपका स्वागत है. आज लगातार तीसरे सत्र में भी शेयर बाजार में गिरावट देखी गई. किन कारणों को मानती है कि इनकी वजह से ही लगातार गिरावट देखी जा रही है, और सबसे बड़ी बात रही कि पूरे सत्र में आज लाल निशान ही देखा गया.
निखिल जी, अगर हम देखें तो अगर ट्रिगर्स देखें मार्केट के कि क्या ड्राइव कर रहा है, तो बहुत समय से ये आशा थी कि शायद ट्रेड डील हो जाएगा अमेरिका के साथ. वो अब उस पर थोड़ा सा लग रहा है क्लैरिटी नहीं है, मार्केट्स इंतजार कर रहे थे. थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग भी हुई है, करेक्शन सॉर्ट ऑफ आया है. ग्लोबली अगर आप देखें एफआईआईज पुल बैक कर रहे हैं, उसका विड्रॉल का असर है. तो ओवरऑल जो मार्केट में ये सब का बहुत ओवरहैंग था. उसके अलावा करेंसी रुपया हम देख रहे हैं कि बराबर, क्योंकि एफआईआईज पैसे यहां से निकाल रहे हैं, रुपए पर भी बहुत प्रेशर आ रहा है. तो ओवरऑल जो है ये ओवरहैंग था मार्केट के ऊपर. लेकिन अगर आप डोमेस्टिक इकोनॉमिक फंडामेंटल्स देखें, कंपनीज का परफॉर्मेंस में ऐसा कोई गड़बड़ नहीं है. अर्थव्यवस्था के नंबर्स बहुत अच्छे आ रहे हैं. अब मार्केट जो है, आरबीआई का मीटिंग है, एमपीसी का मीटिंग है, क्या डिसीजन होता है, ब्याज दर घटती है नहीं घटती है, क्योंकि ग्रोथ के नंबर्स बहुत अच्छे आए जीडीपी के पिछले तिमाही के. तो इस सब को लेकर के ये ट्रिगर रहेगा मार्केट के लिए.
So Deepshika, do you think the stock markets are entering a very important, very pivotal phase with optimism building, though we have had for 2-3 days the markets going down? Do you think 2026 will be a breakout year for the investors? We have had strong corporate earnings, we have had fair valuation, and we are expecting liquidity normalization. Will those be driving the broader market participation?
Rajesh, if you look at the entire year, this year has been a year of turmoil globally per se, and not just in terms of geopolitics, trade, but if you look at the financial markets also, they've also borne the brunt of what was happening in geopolitics. But despite all that, despite all the upheavals globally, markets have been, they've done well for themselves. They've been very fabulous listings. People have made money on them. So overall, if you see, like you said, I think it looks like a good year in that sense. Hopefully, we may end the year. But currently, this upheaval which is there, you know, this pullout of FIIs, currency, impact, uncertainty on US deal, I think that's playing very big on the market right now. If the deal happens, it could be a huge trigger there, very positive trigger for the market.
So yeah. Don't you think that the markets are on course to meet their full year targets, third quarter and the fourth quarter? You would have a heightened economic activity that should result in better receipt collections, given that, as you mentioned first, that there could be a trade deal happening soon.
Fingers crossed on that, because there was a lot of expectation that it may happen around mid-December or something, but we're not hearing anything much on that. So there is a lot of expectation that maybe by year end it happens, or maybe if it spills to next year, it could be, become much more tougher for the export oriented sectors, with a 50% tariff. So at least, there is hope on the 25% penal tariff going, at least as a first, that should go.
Because we have reduced our...
We have really tapered our oil imports from Russia. So there is a strong hope that probably that should happen by year end very soon. Those are the indications. But exactly when, I think that's a big question.
Also, do you expect stronger Q3 and Q4? Now that, you know, we have had consumption measures like income tax cut and GST cuts, and there is a upcoming 8th pay commission linked payouts happening. So the consumption is going to go up, and there is going to be a Q3 and Q4 benefits coming on its way for the market.
The overall expectation is that the demand will remain robust. You know, the urban consumption, which had become sort of a concern, the GST cuts, they managed to revive that. And we've seen the impact in auto and consumer durables. Whether it will continue, whether, you know, it will fizzle out, that is something we need to really closely watch over the next 2 months, how it sort of pans out. Overall, rural demand remains very strong. So, In terms of consumption, probably going forward, we would have a very good Q3. With regard to Q4, you need to sort of really see, because if the trade deal doesn't happen, if the penal tariff doesn't go, then what kind of an overhang will it have on the entire economy? So that is something we really need to watch out for. But overall, if you look at all the macro indicators, they look very, very robust.
दीपशिखा, भी FIS का आपने जिक्र किया था, तो ये माना जा सकता है कि DIS भी लगातार उसी पैटर्न पर अब धीरे धीरे सेट हो रहे हैं कि अगर FIS ने इस तरह से किया तो हम भी करेंगे. और इससे भारत में, अगर भारत की मार्केट की हम बात करते हैं, तो जो छोटे सेक्टर्स हैं जहां पर बहुत बड़े बड़े नाम नहीं आते, उनको भी थोड़ा सा लॉस उठाना पड़ा है हालिया दिनों में.
देखिए, बहुत समय से हम ये देख रहे थे कि FIS तो यहां से पैसा निकाल रहे थे, लेकिन डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस और रिटेल भी काफी हद तक मार्केट में था. लेकिन अब जो ये पुल आउट हो रहा है, ये और ये जो अनसर्टेनिटी ट्रेड डील के आसपास है, उसके अलावा हम देखें रुपए पे बहुत असर हो रहा है. तो ये जो कुछ एक क्षेत्र हैं जो रुपए के ऊपर नीचे से बहुत जल्दी इम्पैक्ट होते हैं, IT, जिनका एक्सपोर्ट से मार्केट से कनेक्शन है, तो कुछ एक जहां पे इनपुट्स बहुत यूज होते हैं, तो इनमें आपको बहुत बदलाव दिखेगा आने वाले जब तक कि ये डील में क्लैरिटी नहीं होती है या ये पुल आउट नहीं रुकता है. तो ये क्षेत्र जो है काफी हद तक इंपैक्टेड रहेंगे.
तो मार्केट में ये भी अब देखा जा सकता है, चूंकि लास्ट क्वार्टर की हम जब बात करते हैं या सेकंड लास्ट की बात करते हैं, उसके बाद फिर सीधे बजट की हम बात करते हैं, तो इन सारी चीजों को देख करके एक्सपेक्ट किया जा सकता है कि मार्केट में और वोलेटिलिटी हमें देखने को मिलेगी, मतलब फ्लैट जाएगा.
बजट मार्केट के लिए एक बहुत बड़ा ट्रिगर रहता है. और अब देखिए तो दिसंबर के बाद तो वैसे चूंकि वेस्टर्न इकोनॉमीज में छुट्टी हो जाती है, क्रिसमस वेकेशन हो जाते, तो वैसे ही वो विड्रॉ करने लग जाते हैं. तो तब डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स जो हैं वो मार्केट से काफी हद तक संभालते हैं उसको, और फिर बजट को लेके एक बहुत आशा बनने लगती है कि क्या मेजर्स आ रहे हैं, कुछ बाजार के लिए कुछ मेजर्स आ रहे हैं. तो एक बजट जो है बाजार का क्या रुख रहेगा आगे के लिए, उसके लिए एक बहुत बड़ा ट्रिगर रहता है.
दीपशिखा, द अपकमिंग मॉनेटरी पॉलिसी रिव्यू, डू यू थिंक इट्स गोइंग टू बी अ बैलेंसिंग एक्ट फॉर RBI? With real GDP strong and consumption improving, the RBI must decide whether to preserve policy space for future shocks or to cut rates early to support growth amid weak nominal GDP. What's your take?
I think your question has the answer itself, Rajesh. Okay. But it is too tough a call.
But you want to hear it from you.
Too tough a call just ahead of, you know, the policy review. But I think there is a strong case for, you know, at least a 25 BPS, as was the expectations, because you have a very low inflation. Do you need more triggers to support boost growth? Definitely, because the gap between your nominal and real is like really sort of come very close. It's shrunk. So do you need, with the 8.2, do you need some more measures to boost the economy? Definitely, you need some support there. So my vote definitely would be for at least a 25 BPS. Okay. But yes, we'll keep fingers crossed for the MPC.
What's your take on the FIIs? Rupees stabilizing, earnings recover, relative valuation improve sharply versus the other Asian markets. Will FII inflows resume now?
Look, I think a lot will depend on the global, you know, what happens globally. Also, if you look at the pattern, this is the time, you know, they're going in for the holiday season and they start withdrawing. And I think the moot point would be whether India gets fresh allocations when they come back in January after the holiday season. Looking at the economy, the story of India, I think it is a very strong story. So there's no reason why they should not come back. But definitely, I think currency is something everybody would be watching very closely.
और आगे बढ़ते हैं. एशिया के प्रमुख पांच शेयर बाजारों में आज मिला जुला रुख देखने को मिला. दक्षिण कोरिया के कॉस्पी में 1.9% की तेजी देखी गई. सिंगापुर का स्ट्रीट्स टाइम्स सूचकांक 0.3% और हांगकांग का हेंगसेंग 0.2% के लाभ में था. वहीं दूसरी तरफ चीन का शंघाई कंपोजिट सूचकांक 0.4% के नुकसान में और जापान का निक्केई खरीफ खरीफ सपाट कारोबार के साथ बंद हुआ. बात करें यूरोप के प्रमुख शेयर बाजारों की तो अंतिम समाचार मिलने तक तीनों प्रमुख सूचकांक आज लाभ के साथ कारोबार कर रहे थे. जर्मनी का डेक्स 0.6% ऊपर था और फ्रांस के कैक ने 0.4% से अधिक की बढ़त बना रखी थी, जबकि लंदन का फुटसी 0.4% के लाभ में था.
Major US indices closed down yesterday, snapping their five-day winning streak. Markets edged lower due to jump in treasury yields and profit booking. The Dow Jones Industrial Average dropped 0.9%. The S&P 500 fell over 0.5% and Nasdaq Composite Index dipped almost 0.4%. Will there be a rate cut or not? And what repercussions will those have on the world economy, particularly in India?
और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की आगामी भारत यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच कई समझौतों पर हस्ताक्षर हो सकते हैं. रूस की समाचार एजेंसी स्पूतनिक द्वारा आज दिल्ली में आयोजित एक ऑनलाइन संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए श्री पुतिन के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोफ ने यह जानकारी दी. उन्होंने कहा कि S-400 और SU-57 जैसी हथियार प्रणालियां अब उनकी यात्रा के एजेंडे में शीर्ष पर हैं. प्रवक्ता ने बताया कि रूस के राष्ट्रपति पुतिन की भारत यात्रा का बेसब्री से इंतजार हो रहा है. उन्होंने कहा कि वे भारत से रूस में आयात बढ़ाने की संभावनाओं पर संयुक्त रूप से विचार कर रहे हैं. श्री पेस्कोफ ने कहा कि आपसी व्यापार बढ़कर $63 अरब तक हो चुका है और यह 2030 तक $100 अरब तक पहुंच जाएगा. रूस और भारत के तेल व्यापार पर उन्होंने कहा कि वे तेल बेचने के अधिकार के साथ साथ तेल खरीदने के इच्छुक देशों के अधिकारों को भी सुनिश्चित करने की संभावनाओं पर विचार कर रहे हैं.
दीपशिखा, गोइंग बिफोर यू आंसर व्हाट the spokesperson for Russia is saying. What about the US? We asked you that question regarding what will happen. Will the rates cut be there? Because Japan is also considering a rate cut. So
you need to see, because you know the tariffs are somewhat feeding there in terms of the prices. So I think that would be a big factor for that, for US particularly.
And I stand corrected. The Bank of Japan is actually is keen to hike interest rates as soon as this month.
Yes.
Okay. अभी हमने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की भारत यात्रा के बारे में बात की, जहां पर S-400 और SU-57 जैसी हथियार प्रणालियों को एजेंडे के शीर्ष पर रखा गया है. इन सौदों की अगर हम बात करते हैं तो डिफेंस सेक्टर को किस तरह से बूस्ट मिलने की संभावना, ऐसे समय पर जब आजकल मार्केट में डिफेंस सेक्टर थोड़ा सा नीचे हमें देखने को मिल रहा है.
निखिल जी, अगर आप देखें तो एक जो डिफेंस सेक्रेटरी है, उन डिफेंस सचिव, उनका बयान आया था कि डिफेंस मिनिस्ट्री जो है तकरीबन 20% तक बढ़ोतरी चाहेगी एलोकेशन में, और ये जो है कैपिटल इन्वेस्टमेंट में जाएगा. ये हमारी जो जितनी भी सुरक्षा प्रणालियां उनको मजबूत करने में और हथियारों को खरीदने में उसका उस पर खर्चा किया जाएगा. तो जाहिर सी बात है, सरकार की तरफ से और खासतौर से हमने जिस तरह के हालात देखे थे इस कुछ महीनों पहले, तो जो हमारा आस पड़ोस है, जिस तरह का टेंशन चलता है और जिस तरह के हालात हो गए थे, तो जाहिर सी बात है कि रक्षा की तरफ से और देश के डिफेंस को मजबूत करने के लिए सरकार सारे प्रयास करेगी. रशिया जो है, रूस जो है, हमारे साथ अगर हम देखें ऐतिहासिक जो हमारे रिलेशनशिप रही है, रशिया के साथ हमारा डिफेंस रिलेशनशिप बहुत मजबूत रहा है, बहुत ही डीप रहा है. तो इसमें हो सकता है कि नई रक्षा प्रणालियों रूस से अगर हम कुछ खरीदना चाहते हैं तो हो सकता है उन पर बातचीत हो, ये एजेंडा में रहे जब प्रेसिडेंट पुतिन आते हैं.
सो दीपशिखा, द स्पोक्सपर्सन हैज एक्सप्रेस्ड कॉन्फिडेंस द ट्रेड वॉल्यूम विल रीच $100 billion बाय 2030. हाउ विल दिस टेक प्लेस कंसिडरिंग US इज गोइंग टू हैव अ कीन आई ऑन ऑल द डील्स दैट इंडिया हैज विद रशिया?
Rajesh, you have to also look at it, you know, we have a huge trade deficit with Russia because we have been purchasing oil from them, which is a very large bulk import from
That's
there.
That's a bone of contention.
Which is a bone of
Not
contention.
Between Russia and
no,
us,
of course, which we are trying to obviously bring down. But Russia hasn't been purchasing that much from us. So definitely there is a case for Russia to increase its imports from India. Mm. And there are multiple areas wherein it can do so. So I think that would be a huge focus when the two leaders meet going forward. And that is really needed if we have to reach that volume or that target of 100 billion. Okay. It cannot be a one-way street.
Moving on, India's ambassador to the US, Vinay Quatra, has held fruitful conversations with a group of influential American lawmakers on strengthening bilateral cooperation in energy, defense, and trade. In a social media post, Quatra said he was honored to host US Senators Lindsey Graham, Richard Blumenthal, Shelton Whitehouse, Peter Walsh, and Dan Sullivan, and Mark Wayne Mullen at India House, the ambassador's official residence in Washington. He expressed gratitude for the support for a stronger relationship between New Delhi and Washington. You think, Deepshikha, that stronger relationship would include the trade deal?
Well, everybody hopes that the trade deal comes by very quickly and soon enough. And I think both sides are very keen on a deal. But I think they have to figure out, you know, when and how the, you know, the contours of the deal. See, both are large. US is a very large economy. India is a very large country. So I think the talks are going on. There are various nuances which need to be addressed. We also have a lot of sensitivity. We are a large agri-economy country, large population, which is dependent on agriculture. US has very large agriculture, not in terms of population dependent on it, but in terms of, you know, the earnings from the sector. And they have large exports to make to other countries. There are sensitivities with regard to genetically modified products and so on and so forth. So I think all these issues would be addressed in a very fruitful manner for both the economies once the deal is reached.
So is there a wait and watch also, considering that just this week we're going to be having India-Russia talks?
I think so. But if you look at, India has tried to sort of balance, address the concerns that the advanced economies had, Europe or US had with regard to purchases, oil purchases from Russia, and without really compromising on the sovereignty part. So I think that balancing act
made
is
it very clear. Our
absolutely,
interests are extremely,
extremely
important.
Yeah. We would be driven by the needs of the citizens. So I think, but India has been, you know, balancing concerns from both sides and citizens' concerns. So it would be interesting, the summit coming about at a time when we are actually very close to coming to a deal, yes, or the announcement of a deal with the United States.
भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति की तीन दिवसीय समीक्षा बैठक कल से शुरू होगी. बैंक गवर्नर संजय मल्होत्रा द्विमासिक मौद्रिक नीति के लिए प्रमुख ब्याज दरों और घोषणाओं पर निर्णय लेंगे. रिजर्व बैंक ने इस साल फरवरी में ब्याज दरों में कमी का दौर शुरू किया और अगस्त में कटौती के पहले तीन चरणों में रेपो दर को 100 आधार अंक घटाकर 5.5% किया था. दीपशिखा, भी आप और राजेश ने इस विषय पर बातचीत की, लेकिन मैं जानना आपसे ये जरूर चाहूंगा यहां पर कि क्या आपको लगता है कि आरबीआई के ऊपर किसी भी तरह का दबाव होगा कि उन्हें इस तरह के निर्णय लेने पड़े, कमी करनी ही चाहिए?
देखिए, आरबीआई पे ऐसा दबाव नहीं होता है. आरबीआई और एमपीसी का निर्णय जो होता है, जैसा कि वो हमेशा मानते रहे, डेटा ड्रिवन होता है
जी.
और पहले भी हमने देखा है आरबीआई ऐसे किसी दबाव में निर्णय नहीं लेता है. बहुत ही डेटा ड्रिवन रहता है, सारे फैक्टर्स को मद्देनजर रखते हुए ही कोई डिसीजन लिया जाता है ब्याज दरों पर, क्योंकि उसका इम्प्लीकेशन बहुत ज्यादा है. इस समय रुपए की जो स्थिति है वो एक फैक्टर
इम्पोर्टेंट
वो एक इम्पोर्टेंट फैक्टर रहेगा इन्फ्लेशन के साथ साथ.
Both the Houses of Parliament have passed the Manipur Goods and Services Tax Second Amendment Bill 2025, with the Rajya Sabha returning it to Lok Sabha today after discussion. The bill will amend the Manipur Goods and Services Tax Act 2017. It will replace the Manipur Goods and Services Tax Second Amendment Ordinance 2025, which was promulgated in October this year. Minister of State for Finance Pankaj Chaudhary had moved the bill in the House today. Replying to the debate, Union Finance Minister Nirmala Sitharaman said the bill will bring in ease of doing business and avoid unnecessary disputes in Manipur.
The very important reform-based steps that we have taken in GST, like track and trace system. Once you do the track and trace system, which is a very big step in administering the GST, you are able to prevent leakages. And therefore, that was one of the things which was passed in the Finance Act of 25. Now we are making it into a bill for Manipur. Similarly, at the time of supplies, particularly for vouchers, the rules which we are dealing with it are being removed so that it becomes simple.
The Finance Minister, Nirmala Sitharaman, today said that with the growing digitalization of the economy and emergence of new financial products, countries globally will have to cooperate with timely exchange of information while ensuring fairness and public trust in the tax system. Addressing the 18th Global Forum plenary meeting in New Delhi, the minister said transparency in tax matters has always gone beyond administrative reforms for India. How true this is, because transparency is there. You have citizens' confidence as well when you have transparency in tax matters.
Absolutely. And I think what minister is referring to is, transparency in the way information is exchanged within the various economies who are part of the global framework. And that is very much needed, because a lot of times you find that advanced economies are trying to push their own agendas and it is not done in a very transparent manner. Yeah.
Global crude oil prices slipped today as traders assessed Russia and Ukraine conflict and mounting tensions between the US and Venezuela. Brent crude was trading over 0.3% down at $62.98 per barrel, while WTI crude was trading over 0.1% down at $59.21 per barrel when reports last came in. In the Indian bullion market, 24-carat gold was trading 0.4% down at 1,30,240 rupees per 10 grams, and silver was trading over 1.1% down at 1,79,590 rupees per kilogram a short while ago.
मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज में ताजा समाचार मिलने तक दिसंबर अनुबंध वाला सोना 0.1% की तेजी से 1,27,515 रुपए प्रति 10 ग्राम पर था, और दिसंबर अनुबंध वाली चांदी 1.7% घटकर 1,75,200 रुपए प्रति किलोग्राम पर थी. देवश्रीखा जी, सिल्वर और गोल्ड पर आपके क्या व्यूज होंगे?
सिल्वर और गोल्ड दोनों हम देख रहे हैं कुछ समय से ग्लोबली जब स्ट्रेस होता है तो बढ़ते ही हैं और वो बढ़ ही रहे हैं. अभी ऐसा कुछ लग नहीं रहा है कि कुछ ऐसी भारी गिरावट आएगी.
दीपशिका, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस एंड आंसरिंग क्वेश्चंस रिलेटेड टू द मार्केट्स एंड इकोनॉमी. एंड बिफोर वी क्लोज द हेडलाइंस वंस अगेन, बेंचमार्क डोमेस्टिक इंडिसेस एंड ओवर 0.5% डाउन, सेंसेक्स फॉल्स ओवर 500 पॉइंट्स, निफ्टी होल्ड्स 26,000. Asian stock markets close mixed, and Kremlin spokesperson Dmitry Peskov expresses confidence on India-Russia trade, says it will reach $100 billion by 2030. That's all we have in this edition of Market Mantra. Till tomorrow, goodbye.
इस कार्यक्रम में विशेषज्ञों द्वारा विचार उनके अपने हैं. आकाशवाणी अपने श्रोताओं को सलाह देता है कि निवेश का निर्णय करने से पहले स्वयं रिसर्च करें या किसी पंजीकृत सलाहकार से राय लें.